क्वचित शीता तकजात वर्ष प्रतिक्रियन कर तो मनुष्य नाश्ते, कभी कभी शीत अधिक ज्यादा पड़ता है या घाम या भी वर्षा, तो इसका प्रति निवारण करना चाहता है लेकिन गरीब होने से निवारण नहीं कर पाता है, तब तो दूसरे के धन को लेने की कोशिश करता है। ये बन नहीं संसार में क्वचित मिथ्या विपणन जबकि उसे बुद्धि समीक्षा तो तबीत साथ, कभी किसी से व्यवहार करता है, लेन देन करता है, खरीद बिक्री करता है, तो कौड़ी भर धन भी इधर से उधर हुआ बस केस मुकदमा थाम जाता है। आपस में व्यवहार करता है और खास करके विवाह का, मान लीजिए हमारा पुत्र है, किसी की पुत्री है, इस तरह से विवाह हो रहा है, तो विवाह करते समय वो ऐसा लगता है कि इनका पूरा हृदय मिल कर गया है, एक दूसरे का स्वागत करते हैं, अच्छा से बोलते हैं, लेकिन लेन देन में थोड़ी सी गड़बड़ हो तो फिर शत्रु हो जाते हैं। अगर लड़के आ गए ससुराल में तो लड़के वाले ने दहेज अच्छा से नहीं दिया तो लड़की को विवाह नहीं करता, नहीं विदा करता, उसके भाई आते हैं, पिताजी आते हैं कि विदा कर दो, नहीं तुमने वादा करके दिया क्यों नहीं, दहेज नहीं है, दिया वो दिया वो दिया, तो आपस में विवाह करता है, व्यवहार करता है, करते समय तो बड़ा प्रेम रहता है लेकिन बाद में लड़ाई हो जाती। क्वचित क्वचित क्षण धनस्त तस्में सज्जा संस्थान बिहार रहे, कभी कभी इतना धन कम हो जाता है इस जंगल में, इस बंगले का धन इतना कम हो जाता है कि सज्जा तक नहीं रहती है, पलंग नहीं, बिछाना नहीं, आसन नहीं, कुर्सी आदि नहीं, और स्थान कोई घर द्वार नहीं, बिहार ही नहीं, कोई भी खंड बिहार का सामान नहीं रह जाता है, मतलब ये मोटरसाइकिल भी नहीं, कार नहीं, साइकिल नहीं, कुछ नहीं, इसको बिहार का खोजने खोजने का सामान भी नहीं रहा, ये तो होना ही है। आज हम बहुत धनी हैं, कल हो सकता है कि गरीब हो जाएंगे, या आज जो गरीब है हो सकता है धनी हो, भगवान की इच्छा से कुछ भी हो सकता है, वो जानते हैं मेरे कर्मों का हिसाब। इस तरह तरह का प्रतिबंध मानता है, इसलिए दूसरे से मांगता है और नहीं मिलता है तो अलग काम बड़ा दुखी रहता है, मांगने पर भी नहीं मिलता है इस मामले में, तो पारक दृष्टि लगते हो मांगने तब वो चोरी करना चाहता है, पारक की दृष्टि दूसरे के धन का दृष्टि रहती है तो उसको चोरी करना चाहता है, लेना चाहता है, तो फिर इसका अपमान होता है, मारा जाता है या जेल में बंद किया जाता है। अन्य वित्तसंग वृद्ध गौरव निबंध विधान निकर्ष, फिर उसी को कह रहे हैं कि एक दूसरे के धन में आसक्त रहता है, वैर करता है तो परस्पर विवाह करता है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि परस्पर दो शत्रुओं में भी विवाह होता है, पहले से आपस में झगड़ा है लेकिन विवाह होता है लड़का लड़की का, और इस समय वो कहते हैं हमको दूसरा लड़ा रहा था, वास्तव में हम लोग तो एक ही है, विवाह हो जाता है फिर झगड़ा होता है, तो इस प्रकार इस वर्ण में या वर्णिक समुदाय विविध क्लेश भोगता है, धन की बाधा होती है, रोग दुख भूख प्यास आदि से विपन्न होता है और चलता रहता है, तांस्तर विपन्न चलता तत्र बिहार जातम परिगृह साथ, तो वर्णिक समुदाय वन में जंगल में चलता रहता है, चलता रहता है, और जो यहां गिर जाता है उसको छोड़ देता है, और कोई नया आकर के दल में शामिल होता है तो उसको ले लेता है, चौथा रहा जो गिरा वो गिर गया, जैसे माता पिता मर गए और इस तरह से वो विदा हो गए, माता पिता छूट दे जाते हैं, चाहे कोई बच्चा भी मर जाता है तो मर गया, बस मर गया और नया आया तो उसको शामिल किया, मतलब जन्म दिया, तो दो तरह से नया शामिल होते हैं, विवाह द्वारा और जन्म द्वारा। इस वर्ग समुदाय में जातम जातम परिगृह जन्म लेता है या विवाह के द्वारा आ जाती है, आ जाता है तो उसको ग्रहण करता जाता है, ये हमारा परिवार है, हमारा परिवार है, जो मरता गया उसको पांचतम विपन्न सहित पत्र बिहार, जो जहां मरा वही छोड़ दिया, ज्यादा से ज्यादा साल में एक बार श्राद्ध कर लेगा और क्या, वो तो छूटा, वो नहीं छोड़ेगा तो करेगा क्या, उल्लास लेकर ढोएगा थोड़े, वो छुपते जाते हैं छुपते जाते हैं, नया जन्म लेते जाते हैं, इस तरह से ये वणिक समुदाय चलता रहा। आरोप करते आप व्यापन को चित आप दूरा धूम उतार होते ही योग, लेकिन आश्चर्य है भी रजर होगी आज तक यह दुनिया इसी तरह से दुख भोग रहा है संसार में, लेकिन इस योग पर अभी तक ये नहीं आया। इस योग को जो इस बन में सरोग है जिस उपाय में अभी तक नहीं आया, जो उपाय इसको इस मार्ग के पार पहुंचा देता है जो भक्ति जो अभी भी नहीं आया, अभी भी माला नहीं उठाया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। अभी ये कह रहा है जो भरत जी, आज तक अभी भी न कश्चित कोई भी योग अधोलो पारम योग न उतरे थे, इस मार्ग के इस भाव के पार लगाने वाले योग को आज तक नहीं स्वीकार किया। हरे कृष्ण संतुष्ट है, भटक रहा है, कुछ भी हो रहा है, उस पार जाने की चिंता ही नहीं। इसी से भगवान का वर्णन किया जा रहा है कि हमको पता लग जाए कि हम जंगल में फंसे हैं, तो हम लोग सोचते हैं नहीं हम जंगल में कहां हैं, इसी रूम में बैठे हैं तो हम सोचते हैं जंगल है ही नहीं, लेकिन याद रखें तो आप भीड़ और सियार के बीच में अजगर ग्रस रहा है, पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा, बड़ागुण में झुलसना पड़ेगा, इसी रूम में बैठा हुआ आदमी भी चिंता से जलता रहता है, है ना। बाहर चमड़े को थोड़ा सा सुख देते देती है हवा, लेकिन मन तो जलता रहता है संसार की चिंता पर, उस हवा से फायदा क्या हुआ, जलते रहो। तो एक बड़ा सुख से बोल रहे हैं, दुख से बोल रहे हैं जब भरत जी के भेद दिए, तुमको तो मार्ग मिल गया, तुम तो पार हो जाओगे, लेकिन ये वणिक समुदाय अब्दे अपना आवर्तित आवर्तित अब तक आवर्तन कर रहा घूम रहे से संसार में, लेकिन भक्ति जोर पर नहीं आया। एक फेर की बात, संसार में जीना खाना घूमना विवाह शादी करना ठीक है करें, नहीं जब बड़े खो ही गए हैं तो अब तो करना ही है, लेकिन इस योग पर भी तो आना चाहिए, इस भक्ति योग को ग्रहण करना चाहिए। दुख की बात है, और जब भरत जी प्रचार के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं, प्रचार करो प्रचार करो, इसे जंगल नहीं प्रचार करना है, इसी में योग है, भक्ति योग है, उसको कर मृजुद्ध गजेंद्रा मनी की सर्वे भूगत गंगा मृजे शरीर मृत्यु ब्रजंती जन्मस्तंभगत दौरा दिया। तो बड़े बड़े राजा हुए, राजा से कहानी कही जा रही है, इसलिए कारण हे राजन, इस संसार में बहुत बड़े बड़े राजा हुए, मूर्जित दिग्गजेंद्रा भी हुए, दिशाओं के हाथियों को जीत लिया, मतलब पूरा ब्रह्मांड भी जीत लिया, जैसे हिरण्यकश्यप मुख्य पृथ्वी को नहीं पूरे ब्रह्मांड को जीते थे, लेकिन इस पृथ्वी में क्या बुद्धि करते थे, नमन के और बद्ध गैरा झगड़ा के कल किए और पृथ्वी पर ही अपने शरीर छोड़कर सो गए, पृथ्वी में नष्ट हो गए, मृदे शरीर जो बने शरीर से गए मर गए, इतनी साहस था इतनी बड़ी कमाई किए, संसार विजय किए, लेकिन भक्ति नहीं किए, इतना दुर्लभ है, इसलिए मैं तुमको बार बार वीर कह रहा हूं, तुम वीर हो रहे हो वास्तव, तुम जीत चुके हो संसार, और जो दिशाओं को जीते संसार को जीते वो तो कुछ भी नहीं। तो इस मार्ग को कौन जीतते हैं, भक्ति योग में कौन आते हैं, जो निष्ठ बंद और गत दायरे भी है, जो किसी से वायर नहीं करता है, किसी को सताता नहीं है, बंद नहीं होता है, वही इस भक्ति योग में आता है। अच्छा, पावे फिर सिंहावलोकन से वर्णन कर रहे हैं, जगह भरतों से वर्णन किया और कारण कोई आ नहीं रहा है इस भक्ति योग में, खेल करके प्रेरित करके फिर सिंह अवलोकन करते हैं। सिंह अवलोकन का अर्थ होता है सिंह जब जंगल में चलता है
तो धीरे धीरे पाए बढ़ाता है और देखता जाता है पीछे भी, बहुत मनस्वी होता है। जंगल का राजा है लेकिन उसके चारों से खतरा रहता है, इसलिए बहुत सावधानी से चलता है। आगे भी देखता है और रुक करके पीछे देखता है, बगल में देखता है। इसको सिंहावलोक कहते हैं संस्कृत, सिंह का अवलोक। तो जब भरत जी वर्णन किए और फिर पीछे देखकर के वर्णन कर रहे हैं, जिसका वर्णन किए तो इसी में से कुछ छूटी हुई बातों का वर्णन कर रहे हैं। सिंह जी कहते हैं कि सिंहावलोक से वर्णन कर रहे हैं। प्रसद्य की कॉपी लता भुजाश्रय पदाश्रयान अव्यक्त पदा दिजस्वी है। कभी कभी अगर बने किसी लता के शाखाओं को पकड़ करके बड़ा आनंद का अनुभव करता है। जंगल में चलता है, चलता है, देखता है बहुत सुंदर लता है, तो लता को पकड़ करके और सुख का अनुभव करता है। और उस लता पर बैठे हुए छोटे छोटे पक्षियों के अव्यक्त स्वर को सुनता रहता है। लता के आश्रय में बैठे हैं वो पक्षी और बहुत मधुर बोलते हैं, अव्यक्त मतलब पूरा पूरा नहीं बोल पाते हैं, बहुत मुश्किल से पापा मम्मी कहते हैं, उसको सुनता रहता है। तो लता में कहीं भी फंस जाता है, लता का आश्रय लेता है। लता एक का अर्थ है यहां अपनी स्त्री। कभी कभी वह अपनी स्त्री का आलिंगन करके अपने को बहुत सुखी मानता है और सोचता है कहां दुनिया में दुख है, केवल सुख ही सुख है। लता भुजाश्रय, खास करके स्त्री की भुजा जब उसके कंठ में आती है तो उस समय तो अभी ब्रह्मा ने सभी कटकोटी गुण सुख पाता है, उस समय होता। और इसी लता से उत्पन्न, इस लता से उत्पन्न इसी स्त्री से उत्पन्न एक दो बच्चे हैं और वे अव्यक्त बोली बोलते, पूरे साथ नहीं बोलते, मस्खलित अक्षर में बोलते, तो उसमें भी कान लगाए रहता है उसको सुनता रहता है। तो अपना जन्मा हुआ बेटा यदि पिताश्री कहे और अब तो ये पापा और डैडी कहने लगे उसमें कोई रस यहां नहीं, लेकिन फिर भी अपने जन्मा हुआ अदृष्ट का संबोधन करे तो क्यों नहीं आदमी उसको सुनेगा, सुनना चाहेगा, तो सुनता रहता। और क्वचित कदाचित हरिचक्र प्रस्त्र से सक्षम विभक्त बकपंक दिव्य, मतलब इस जगत में बड़ों का समुदाय है, कभी कभी डरता है सिंहों के समुदाय से, देखता है जंगल में सिंह आ रहे हैं, और बड़े बड़े सिंह, छोटे छोटे सिंह, तो डर जाता है और भागता है। भाग करके किसकी शरण लेता है, बकुला गिद्ध और कंक की शरण लेता है। बताइए सिंह के भय से कोई बकुला की शरण में बच सकता है, बकुला उसको बचा सकता है? बाघ को रहती थी बाघ बगुला को, तो हरि चक्र, हरि मतलब सिंह, और यहां हरि चक्र का अर्थ है भगवान विष्णु के काल चक्र से डरता है। कभी कभी दुनिया जब कैलेंडर देखता है अपने जन्म दिन के, सोचता है तुम्हें 65 वर्ष का हो गया, 55 का हो गया, 70 का हो गया, तो अब तो मुझे शरण लेनी चाहिए, परलोक के लिए कुछ करना चाहिए। काल से डरा काल चक्र से, तो काल चक्र जिसका आयुध है, जो चक्र चला रहा है, उसकी शरण लेगा तब बचेगा ना, वो फिर बिना नहीं काटेगा। लेकिन जिसका काल चक्र है भगवान विष्णु की शरण न लेकर के गीध गीध कौक और बटेर की शरण लेता है। तो कभी कभी मैं संसार में देखते मर जाऊंगा, करने के लिए कुछ करना चाहिए, करना चाहिए, तब जाकर के गीधों की शरण ले लेता है। वैष्णवों के अलावा जो भी साधु महात्मा है सब गीध है, गीध कौक बटेर। और सिंहों का समुदाय जो है छोटा छोटा काल है, तो बहुत बड़ा जो सिंह है द्वीपरार्ध है, उससे छोटा बड़ा सिंह कल्प है, या इससे छोटा सिंह युग है, इसमें भी कोई वर्ष है और 6 महीना आयन है, पक्ष है, तो दिखता है कि ये तो हमारा जीवन कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, तो शरण लेने के लिए भागता है। लेकिन वह बिल्कुल फिर शरण किसकी लेता है, गिद्ध की। गिद्ध सिंह क्या कर्मों से बचाएगा, बताइए। बेटे को शरण लेगा तो दीदी उसको खाना चालू कर देगा, वो खुश होगा, वो खुश होगा कि सिंह इसको मार दे और जो बचेगा हड्डी हड्डी में थोड़ा मांस रहेगा तो मैं ही खाऊंगा। बहुत सख्त बात कही जा रही है और इसकी व्याख्या तो अभी दो हड्डी में करूंगा, आएगी व्याख्या। वैष्णव गुरु को छोड़ करके जब हम दूसरे की शरण लेते हैं तो उनके यहां कौनिक डॉक और ती भी कहा गया जो दूसरे की शरण लेता है। बिना भगवान की शरण के कोई पार नहीं हो सकता है। जो लोग कहते हैं कि गुरु की शरण लो और भगवान का की चर्चा भी नहीं करते हैं, वही गिद्ध कंक बटेर वो कभी पार नहीं करेंगे। सिंह से क्या बचाएंगे, सिंह से वो बचाएगा जब सिंह से बलवान की शरण ले जाएगी। बिना भगवान की शरण को हम पार नहीं हो सकते हैं। मानव ने प्रपद्यंते माया नेता अंतरम जीते, हम लोग जो शरण लेते हैं गुरु गुरु की शरण नहीं लेते हैं, हम लोग शरण भगवान के लिए नहीं वास्ते हैं। भाया गुरु, गुरु के द्वारा वास्तव में हम हरे की शरण ले रहे हैं, गुरु की शरण नहीं ली जाती। गुरु शरण सिखाता है कि शरण लो कृष्ण की, उसके द्वारा हम शरण लेते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु की शरण ली और यही तेरे वास्ते बंद हो गया गुरु तक, फिर हरे तक जाने का कोई दरवाजा खुला नहीं। गुरु 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 सारी दुनिया में इस तरह कौक दीघ बटेर भरे पड़े और सोचते हैं कि अब खाए कमाए अब चौथा पर में जरा शरण लेनी चाहिए, तो शरण नहीं लेना है तो दीघ की शरण क्यों लेंगे, भगवान की शरण लेना चाहिए। इस तरह सिंह को झोर से डर करके दीघ की शरण लेता है और पैर बन चुके और जब दीघ बटेर और बकरों की शरण लेता है तो उनके द्वारा एक ठगा जाता है, ठगा जाता है, देता है अरे ये तो केवल पैसा लेने के फेर में है और हमारा कुछ नहीं किए और उनका खान पान भी शुद्ध नहीं है, सब मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, प्याज लहसुन खा रहे हैं। तो ये जब धोखा देते हैं तब फिर हंसों की शरण लेता है। हंस मतलब ब्राह्मण या वैष्णव, तो ये फिर वैष्णवों की शरण में आता है। उधर किसी संस्था में जब ठगा जाता है तब तो इस काम में आता है, हंसों को शरण लेता है। लेकिन हंसों का आचरण उसको अच्छा नहीं लगता है, ये चार बजे भोर में उठना है और इतना शुद्ध रहने इतना बिगड़ चुका है कि हंसों का आचरण और ये चरण अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है, ये मत खाओ ये मत खाओ, जब जाओ कम से ये करो, पर साफ सुथरा रहना इसका स्वभाव नहीं है। इसलिए हंसे का स्वभाव इसे अच्छा नहीं लगता है तो फिर बांगर में चला जाता है फिर बांगर में चला जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस काम छोड़कर बांगर में चले जाते हैं। बहुत लोग बांगर मतलब वह है आदमी जो केवल स्त्री आदमी में असक्त रहता है, बस बानरों का स्वभाव है। बानरी जो होती है बानर की ओर देखा करती है और बानरी बानर की ओर, हम ये कहो कहते हम देखी रोया और रिया रोया देखी हमरा होगी, देखने से क्या होगा, देखते रहते हैं, ये बानर का स्वभाव है, देखते हैं और सैकड़ों बार क्षम करते, ये बानर का स्वभाव। तो देखते हैं कि यहां तो रिस्ट्रिक्शन है, नो इलिसिट सेक्स, नो नेटिव थिंग, तो सोचता है इसे अच्छे हैं बानर, वहीं चलेंगे बानर में रहे, जहां कोई भी प्रतिरोध नहीं है, स्त्री संग आदि का खान पान का कोई प्रतिरोध नहीं है, पर स्त्री और पित्र में ममता है, कमा रहे हैं खा रहे हैं, इस डाली से उस डाली पर, इस काम से उस काम पर, इस शहर से उस शहर में, बस यही काम, और परस्पर एक दूसरे का मुंह देखने में इतने आसक्त रहते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि एक दिन हमको मरना है। इस संसार में मनुष्य स्त्री का मुख देखने में इतना आसक्त हो जाता है कि वो अपने मरण को भी भूल जाता है, एक दिन मरना है। परस्पर बिच्छू विस्मृतावध है चीनी का, परस्पर के उद्भिक्षु समुद्र मतलब खूब आंख भर कर देखना, उग्र और विस्मृत अवधि, अपना मरणावधि भी भूल जाता है। तज्जा पीड़ासन सुगंध उत्पन्न है। इसकी व्याख्या में कर दिया कि बानर जाति का राष्ट्र क्या है, राष्ट्र में केवल आनंद का खेल, उसका आनंद का खेल है बानरी की ओर देखना और उसके साथ सत्संग करना, यह उसका राष्ट्र है। और उसी राष्ट्र में उसी राष्ट्र विहार में लगा रहता द्रोण चरणसिंह सुखदार वच्चन है। द्रोणसिंह मतलब पेड़ की शाखाओं पर घूमता रहता है, बानर को देखे हम कहीं बैठता नहीं है बहनी से, इस दाव से इस बैंक पर झूमता रहता है। अब ये काम किया जो ऑफिस में है तो ये बानर फिर चला जाएगा घर में, ऑफिस से घर, घर से दुकान, इधर उधर, फिर खाओ पियो स्त्री संवादी घसो के। और सुखदार वत्सल स्नेह किसके साथ है, पत्नी के साथ स्नेह है और बच्चा के साथ, बस बानर का अपनी पत्नी और बच्चा से बहुत स्नेह होता है। कोई दूसरा बानर यदि काट दिया उसके बच्चे को तो उसके लिए पूरा समाज जुटा करके झगड़ा करते हैं बानर से, तो देखी गई बात बोला या दीना, लेकिन घर के रिश्ते में क्या रहता है बानर, बोला या दीना केवल स्त्री संघ के लिए बेचारा बना हुआ है, घर में पड़ा रहता है बस, घर में रहने का और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। ये कहे उद्देश्य है बोला है, विवाह का अर्थ होता है मैथुन, इसके लिए लचार है दीपस विश्वास है बंधन, और फिर घर गृहस्थी के बंधन में पड़ा रहता है काम धंधा करने के उचित प्रमादक गिर कंदरे कदम, और कभी रास्ता चलते चलते असावधानी से पर्वत के कंदरा में गिर जाता है। कंदरा में गिरने का मतलब है रेग से ग्रस्त हो जाता है, खान पान ठीक से नहीं रखा, असावधान हो गया तो गिर गया अस्पताल, यही एक कंदरा। अथवा कहीं कोई गिरते कर दिया, चोरी होने कर दिया तो जेल भी एक कंदरा है, उसमें गिर गया दो चार महीना या दो चार दिन के लिए, फिर उस कंदरा में गिर। लेकिन अगर जीना रहता है इसके भाग में, इसीलिए गिरते गिरते किसी वृक्ष की डाली को पकड़ करके झूम जाता है, मतलब अस्पताल जाता है लेकिन अभी कर्म में लिखा है जेल है, इसलिए दवा दवा से बच जाता है। अच्छा बच भी गया तो चाहिए कि अब यहां हरे कृष्ण करे, यहां भी हरे कृष्ण ही करता है, झूम जाता है तब तक ऊपर से मधु एक भी बूंद चेती रहती है, तो उसको होने के बाद एक बूंद गिरे उसी को चाटता है, कहता ओह कितना सुख है, लेकिन भुजाएं में दर्द दे रहा है। अब वो भी जो कर्म फल है जीने का, मरने वाला है, गिरने वाला है नीचे, और उसको कंदरा में सांप है वो दस लेगा, वैसे ही फंस जाता है। मतलब बेरा आदमी भी मरने की हालत में भी वो मधु के लिए तरसता है, थोड़ा स्त्री को देखने को मिल जाए, इसका समय मिल जाए बस, तो इस समय भी तो महामंत्र जप हो, 50 के ऊपर वालों को एकदम अनिवार्य कर देने चाहिए वास्तव में, तुमको सुना हमारा पूरा करना ही है, वास्तव में सरकारी आदेश होना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कभी कभी व्यभीत रास्ते, कभी कभी हाथी से भयभीत होता है, या हाथी का अर्थ है मृत्यु, कभी कभी से भय होता है कि हाय मर जाऊंगा मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी बधे पीने का फर्म होता है। अतः कथनचित सदमुक्त आपद, अगर किसी तरह से दवाई हुई डॉक्टर मिला अच्छा, अगर मुक्त भी हो गया तो ऐसा नहीं कि निकाल कर फिर भजन करे, फिर ऐसी दीर्घ समुदाय में चलना चालू हो जाए, रोग बीत जाता है जेल से छूट आता है तो फिर वही काम जो पहाड़ा करता था। अब कथित प्रेरणा अगवा मनुष्य में अगवा मनुष्य तो भंडन जनों अध्यात्म देव पश्चिम प्रमुख संहार कर रहे हैं, यह दैनिक समुदाय है अजय माया द्वारा इस भवाटवी में भटकाया जा रहा है, और आज तक कोई भी मतलब गुरु गुरु आदि की सहायता से कोई भी मैं वेद नहीं जानता है कि मैं माया में भटक रहा हूं मर रहा हूं, भगवान को नहीं जानता है, अद्वैत व्यक्ति देखिए बार बार लगा रहे हैं आज तक, तो रहू गोरख तो मती कह रहा है कि रहो रहो ये जो मैं बनियोग कथा कह रहा हूं दूसरा कोई नहीं है तुम अति तुम भी नहीं हो। जितनी घटनाओं का मैं वर्णन किया सब जगह तुम अति लगाना पड़ेगा। तुम अति तुम्हारे भी घर में भेड़े और सियार हो, तुम भी पर्वत की चढ़ाई करना चाहते हो, तुम भी जीवते हो अजगर के मुख में, ये अति सब जगह लगाना पड़ेगा। और इसके साथ रहेगा के साथ साथ आप समस्त श्रोताओं से प्रार्थना है कि अपने अपने लिए इसको लागू कीजिए। रहे रहे के स्थान पर तुम अपनी अहम अपनी सभी यही है वास्तव में। लेकिन वे लोग अब इतने पार हो गए जो माला जप रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं तो पार हो गए, लेकिन जो नए जप रहे हैं तो तुम अपनी यही तुम रहोगे संगठन कर रहे तुम अपनी जब भविष्य समस्त दंड कृतभूत में तो असज कत्मा हरिष्य रहना सुन जाना समाधा करा के कारण हे राजा रहोगा तुम भी और समस्त दंड होगा और किसी को सताए मत किसी को दुख मत दो बल्कि सबका हित करो सबसे प्रेम करो कृतभूत मैं पर भूतों से जीवों से प्रेम करना सीखो। सबके हृदय में भगवान असज्जित आत्मा और मन को अनासक्त कर लो, आत्मा को असज्जित करो और हरि सेवा भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो, इंद्रियों से भगवान का सेवन करो, श्रवण कीर्तन मनन निधि ध्यासन आदि, और इसे तुम्हारी समझ तुम्हारे ज्ञान की तलवार की धार तीक्ष्ण हो जाएगी और तब इसे माया मोह काट करके भगवान के पास पहुंच जाओ। तरह अतिकारण अति कारण तरह अति कारण इस भराटवे को इस पार चले जाओ तुम ये इसी तरह फंसा हो। सुंदर उपदेश है। तो इस तरह से जितने मैं व्याख्या थी उसमें से व्याख्या नहीं की है जब भरत जी केवल ये सुवार आदि का है, लेकिन राजा रघुगण बहुत बड़े कुशल व्यक्ति थे, श्रद्धालु थे, विद्वान थे, समझ गए मैं समझ गए कि अब अपनी कृतज्ञता अपने अनुमोदन व्यक्त कर रहे हैं जल भरत जी के प्रति। बड़ा सुंदर यह श्लोक है तीन श्लोक राजा रघुगण गदगद हो रहा है, रोने लगे थे चरण पकड़ करके, उनके उनकी आंखों से आंसू बहने लगा और कहते हैं राजा से अहोजन्म सौभिजन्मृष्ण महात्म प्रचुर सुनोदन सर्वस्व परोक्षवादस्य अर्थम व्याख्यानम विभिन्न व्याकरण राजयोग इस परोक्षवाद का अर्थ बिना व्याख्यान के ही समझते। पहले मैंने कहा था कि मैं अपने संशय के विषय में पूछूंगा, लेकिन उनका संशय नष्ट हो गया, मैं समझ गया अपना कर्तव्य सारा माया मेह भंग हो गया, भगवान ने तुम मेरा तुम कह रहे हैं अहो। सबसे पहले अहो का अर्थ आनंद से यह शब्द निकलेगा, अहो कितने आनंद की बात है, कितने हमारे जीवन में खुशी की बात है। अखिल जन्म से निर्जन्मय सौभल जितने भी जन्म हैं जितने भी शरीर हैं उन सब में सुंदर शरीर है निर्जन्म, मनुष्य का जन्म सबसे सुंदर। आज मैं अनुभव कर रहा हूं राजा रघुगण कह रहे हैं कि जितना भी शरीर है अखिल जन्म से बने अखिल जन्मों में मेरे जन्म अवश्य बने मनुष्य का जीवन ही सबसे अच्छा। तो मानो जब भरत जी कहें कि हम देवता आदि का शरीर क्यों हीन कह रहे हैं तो कह रहे क्यों जन्म भ्रष्ट होता है अगर तुम अनुष्ण इस जगत में जिनसे बड़ा जन्म कुछ भी नहीं है उन देवताओं का जन्म लेकर के भी क्या होगा अपर जिसे कोई पर नहीं अथवा दूसरा देवता आदि का जन्म लेने से भी क्या लाभ है जहां पर भगवान श्री कृष्ण के प्रेमियों का भक्तों का प्रचुर समागम न मिले, स्वर्ग की पूर्ण कर रहे हैं। स्वर्ग में देवताओं को जो शरीर मिला है सब तरह से मनुष्य से श्रेष्ठ है। आयु बहुत लंबी होती है, ज्ञान बहुत अच्छा होता है, बल बहुत बड़ा होता है, और ऐसे ऐसे चीज खाते हैं कि पसीना कभी नहीं निकलता है, थकावट कभी नहीं होती है, केस कभी नहीं पकते हैं, चमड़ा में झुरियां नहीं पड़ती, तो वह शरीर अच्छा है ना। लेकिन वहां पर महात्माओं का प्रचुर संग नहीं, भक्तों का संग नहीं, सब ऐसे महात्मा घूमते रहते हैं, जैसे हमारे गुरु सरकार पर्वत में ये सब घूमते हैं, लेकिन देवताओं का मन भोगों में इतना अंगुष्ट रहता है कि बस तुचन निरीक्षण के कोई ज्यादा संग नहीं कर पाते। ये सात सात दिन बैठ कर सत्संग करने का उन्हें अवसर नहीं है। तो जब जन्मों में आप जैसे ऋषिकेश के भक्तों का प्रचुर समागम नहीं है, उस जन्म से क्या लाभ? मतलब जीवन का सबसे बड़ा लाभ